हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे ही झलक ने सिद्धार्थ से ये कहा, अब किसी के मन में शक की कोई गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि केवल सिद्धार्थ खुराना की बीवी ही उससे इस तरह से बात कर सकती थी। वरना किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि सिद्धार्थ खुराना के सामने बिना झिझक अपनी जुबान खोल सके। झलक की आवाज में इस वक्त बिल्कुल भी कमकपी नहीं थी। फिलहाल अब जल्दी से वो लड़का वहां आ गया और घुटनों के बल बैठकर झलक से माफी मांगते हुए बोला, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, आप चाहें तो मुझे थप्पड़ मार लीजिए। ये कहकर उसने दो चार थप्पड़ खुद को ही मार लिए। लेकिन झलक ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने अपनी ड्यूटी निभाई, शायद वाकई मैं एक जंगली लड़की हूँ और तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों करोगे भला। इस तरह की जंगली लड़की भला द डेट सिद्धार्थ खुराना की बीवी कैसे बन सकती हैं। जैसे ही झलक ने ये कहा, सबकी हवा एकदम टाइट हो गई। वहीं सिद्धार्थ अब तक घूर घूर कर सबको देख रहा था। उसने रोनित को इशारा किया। देर ना करते ही कुछ गार्ड वहां आ गए और रोनित ने दोनों लड़कों को पकड़वा लिया जिन्होंने झलक के साथ मारपीट की थी। साथ साथ उन लड़कियों को भी गार्ड ले गए जिन्हें सिद्धार्थ ने सख्त सजा देने के लिए कहा था। कुछ ही देर में उन बंद कमरों से उनकी चीखें सुनाई देने लगी और उनकी जमकर धुलाई होने लगी। झलक को जितनी चोटें लगी थीं उनसे कई गुना ज्यादा चोटें उन सबके शरीर पर पड़ चुकी थीं। तभी जाकर सिद्धार्थ खुराना को थोड़ी राहत मिली। झलक सिद्धार्थ को रोकना चाहती थी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन अब सिद्धार्थ अपना काम कर चुका था। उसी समय रणविजय, जो झलक की खबर सुनते ही भागा चला आया था, सिद्धार्थ की कंपनी में पहुंचा। झलक को सिद्धार्थ के पास सुरक्षित बैठे देख वो थोड़ा शांत हुआ और जल्दी से बोला, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और अगर तुम्हें सिद्धार्थ खुराना की कंपनी में ही आना था तो क्या तुम मुझे बता नहीं सकती थी? तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? देखा, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया? ये तुमसे नफरत करता है, जानबूझकर उसने अपने स्टाफ से ये सब करवाया है और अब तुम्हारे सामने महान बनने के लिए सजा देने का नाटक कर रहा है। रणविजय की बात सुनकर झलक थोड़ा चौंकी। उसने एक पल के लिए सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद जो रणविजय कह रहा है कहीं वो सही तो नहीं। आखिर सिद्धार्थ ने खुद कहा था कि आज के बाद वो झलक को सांस लेने तक के लिए मोहताज बना देगा, कि वो उसके साथ इतना बुरा करेगा कि वो सोच भी नहीं सकेगी। कहीं ये सब उसी का प्लान तो नहीं? लेकिन झलक ने तुरंत खुद को संभाला। उसने रणविजय को देखते हुए कहा, मिस्टर रणविजय खुराना, ये हमारे आपस का मामला है, प्लीज आप बीच में ना पड़े। झलक नहीं चाहती थी कि रणविजय उस पर हावी हो, क्योंकि वो कई बार उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर चुका था, उसे धमका चुका था, यहाँ तक कि कह चुका था कि वो उसकी जान तक ले सकता है। ऐसे में वो रणविजय पर कैसे भरोसा करती? इस समय झलक को तो अपनी ही परछाई पर भरोसा नहीं था, न सिद्धार्थ पर न रणविजय पर। वो जो भी करना चाहती थी खुद के दम पर करना चाहती थी। शहर के लोगों से उसका भरोसा कब का टूट चुका था। उसकी बातें सुनकर रणविजय मायूस हो गया, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी खामोश ठंडे चेहरे से रणविजय को देख रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई तेज चाल चल रही हो। तभी सिद्धार्थ ने रोनित को इशारा किया। रोनित झट से झलक के पास आया। मैडम प्लीज मेरे साथ आइए। झलक जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में दर्द और कमजोरी थी और वो नहीं चाहती थी कि इस हालत में वो दादी के पास जाए और उन्हें परेशान करे, इसलिए वो रोनित के साथ चली गई। रोनित ने उसे सिद्धार्थ के प्राइवेट केबिन में शानदार सोफे पर लेटाया और डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर झलक का इलाज करने लगे। इधर सिद्धार्थ रणविजय की तरफ मुड़ा। तुम्हें मेरी बीवी की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही? तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, मेरी बीवी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ, मैं उसे संभाल सकता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे कमरे में गया, जिस कमरे में कुछ गार्ड ऑलरेडी उन सबको मार रहे थे जिन्होंने झलक पर हाथ उठाया था। वहां जाकर अब रणविजय को उस वीडियो वाले लड़के की याद आई जिसने झलक के पेट पर मुक्का मारा था। वो अचानक आगे बढ़ा और उसने उस लड़के का हाथ खुद अपने हाथों से बड़ी बेदर्दी से तोड़ दिया था। उस लड़के की दर्दनाक चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। लेकिन रणविजय तिरछा मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को देखकर बोला, अब जाकर थोड़ा सुकून मिल रहा है। ये बोलकर वो वहां से चला गया। अब तो सिद्धार्थ के माथे पर बल पड़ गया। वो सोचने लगा कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। दादी के बर्थडे पार्टी में इन्वाइट होकर आया था, दादी का बर्थडे भी खत्म हो चुका, तो फिर अब ये किस चीज का इंतजार कर रहा है? यहाँ से जाता क्यों नहीं? और उसके साथ उसकी मैनेजर भी यहाँ क्या करने के लिए आई है? सिद्धार्थ को अब कहीं ना कहीं रणविजय पर पूरा शक हो रहा था, इसलिए उसने रोनित को कहा कि फटाफट इस रणविजय के यहाँ आने का असली मकसद पता लगाओ, आखिर इतने सालों बाद खुराना हाउस वापस क्यों आया है। वहीं डॉक्टर ने झलक को कुछ पेन किलर दिए, उसका ब्लड साफ करके स्ट्रेचिंग कर दी थी और बैंडेज भी लगा दी थी। उसे खास बड़ी चोटें नहीं लगी थी, बस हल्की फुल्की जगह जगह खरूंचे और चोटें थी जिनसे खून निकल रहा था। फिलहाल पेन किलर लेने के बाद उसे थोड़ा रिलीफ मिला और वो थोड़ी देर के लिए वहीं सो गई। तब तक सिद्धार्थ ने अपने सभी स्टाफ को, जिन्होंने झलक के साथ बदतमीजी की थी, तुरंत फायर कर दिया। जिनकी हालत ज्यादा खराब थी उन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया। फिर वो झलक को सोते हुए देखने लगा। और उसके ठीक सामने बने अपनी चेयर पर बैठकर चेयर को आगे पीछे झुलाते हुए कुछ सोचने लगा। करीब आधे घंटे बाद झलक की आंख खुली तो उसने देखा कि सिद्धार्थ खुराना उसके ठीक सामने लाल आंखों से बैठा हुआ उसे घूर रहा है। झलक जल्दी से उठकर बैठ गई। दर्द तो था लेकिन वो ठीक थी। वैसे भी वो इतनी नाजुक या कमजोर लड़की नहीं थी कि जरा जरा सी खरोंच पर रोना शुरू कर दे। इसलिए वो फटाफट उठकर बैठी और सिद्धार्थ से बोली, मिस्टर खुराना, मैं यहाँ सिर्फ आपसे 5 मिनट की मीटिंग के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपने मेरे लिए पहले से इतना बड़ा प्लान सोच कर रखा है। वैसे वाकई मानना पड़ेगा, मुझे दर्द देने के लिए क्या चाल चली आपने। ये सुनकर सिद्धार्थ और ज्यादा हैरान हो गया। वो सोचने लगा, ये लड़की एक नंबर की इरिटेटिंग होने के साथ साथ बेवकूफ भी है। रणविजय ने क्या बोला था और इसने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया, ये ऐसा कैसे सोच सकती है। वो गुस्से से झलक को घूर कर बोला, बताओ तुम मुझसे मिलने क्यों आई थी। तभी झलक को दादी की बोलती हुई बात याद आई। उसने सिद्धार्थ को देखकर कहा, मैं सिर्फ आपसे कहने आई थी कि मैं आपके ऑफिस में काम करना चाहती हूँ। नौकरी करने आई थी, इंटरव्यू देने आई थी। अगर मेरे लिए कोई काम है तो आप मुझे रख लीजिए, मुझे पैसों की जरूरत है। भले ही मेरी शादी बिजनेस टाइकून या एक डेविल सिद्धार्थ खुराना से हो गई हो, लेकिन शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा खर्चा आप उठाएंगे। मेरे माँ बाप का खर्चा आप नहीं उठाएंगे, उनके लिए मैं हूँ और मैं खुद सब संभाल लूंगी। अगर आपके पास कोई वैकेंसी है तो नौकरी दे दीजिए, नहीं है तो मैं किसी और कंपनी में चली जाऊंगी। जैसे ही झलक ने ये बातें बेधड़क अंदाज में बोली, सिद्धार्थ अंदर ही अंदर तिलमिला उठा। वो सोचने लगा, इतनी गलतियां करने के बाद भी इस लड़की में इतनी अकड़ कहाँ से आती है। आखिर ये समझती क्या है खुद को, कोई इतना बेपरवाह और बेहिचक आखिर कैसे हो सकता है। फिलहाल झलक जानती थी कि सिद्धार्थ का यही जवाब होगा कि उसके जैसी गंवार लड़की के लिए उसकी कंपनी में कोई जॉब नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चली जाए। लेकिन तभी सिद्धार्थ ठंडे स्वर में बोला, तुम 2 दिन बाद से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। अब जैसे ही सिद्धार्थ ने ये कहा, झलक की आंखें हैरानी से भी बड़ी हो गईं। वो सिद्धार्थ को घूरती हुई बोली,
व्हाट, क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख रहे हो? रियली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कोई प्लानिंग है? कहीं मुझे मारकर अपनी कंपनी में दाबकर मुझे भूत तो नहीं बनाना चाहते? या मेरे साथ कुछ बोलो, तुम मुझे अपने यहाँ काम पर कैसे रख सकते हो? अरे मैं यहाँ तुमसे पूछने आई हूँ कि तुम मुझे रखोगे या नहीं, तो सीधे सीधे मना कर दो ना। इस तरह से मुझे जॉब देने की क्या जरूरत है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो?